नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। इसराइल लेबनान युद्ध विराम के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की घोषणा की। ईरान की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में 11% से अधिक की गिरावट। भारत ने इसराइल लेबनान युद्ध विराम का स्वागत किया, कहा भारत शांति की दिशा में उठाए गए हर कदम का समर्थन करता है। म्यांमा के पूर्व राष्ट्रपति विन म्यंट को 9 वर्ष की सामूहिक माफी योजना के अंतर्गत रिहा किया गया। और महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच डरबन में जारी। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने घोषणा की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुल गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री अराक्षी ने कहा कि इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम के अनुरूप जलडमरू मध्य पूरी तरह से खोल दिया गया है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पोस्ट करके कहा कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूर्ण आवागमन के लिए खोल दिया है। इस घोषणा के बाद तेल के मूल्यों में 11% अधिक की गिरावट आई। हाल के कुछ सप्ताह में जलडमरू मध्य करीब करीब बंद था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की स्वतंत्रता पर आज कई देशों की बैठक आयोजित की थी। एक रिपोर्ट।
ईरान के अधिकारियों ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सिर्फ गैर फौजी जहाजों को रास्ता दिया गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी कि जलडमरू मध्य के पास आने वाले किसी भी फौजी जहाज को नियम का उल्लंघन माना जाएगा और उसे कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है। इस नाकेबंदी की वजह से ईरान को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान के इस तय रास्ते का ऐलान करने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें $90 से नीचे गिर गई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
विदेश मंत्रालय ने आज इसराइल लेबनान युद्ध विराम का स्वागत किया। आज नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत शांति की दिशा में उठाए गए हर कदम का समर्थन करता है। मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान से 2,361 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। श्री जायसवाल ने बताया कि इनमें से 2,060 भारतीय आर्मेनिया के रास्ते और 301 अजरबैजान के रास्ते वापस आए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने मार्च में बांग्लादेश को 22,000 मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल और श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। प्रवक्ता ने 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से भारत के हटने की भी पुष्टि भी की।
On COP, yes, India has withdrawn.
COP के संबंध में भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस फैसले में कई बातों का ध्यान रखा गया। भारत जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हम G20 देशों में से एक हैं जिन्होंने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से निभाया है। हम अपने ग्रीन एजेंडा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।
And we continue to build on our green agenda.
इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का संघर्ष विराम आज से लागू हो गया है। हालांकि इसराइल की ओर से लेबनान पर रुक रुक कर हमले जारी हैं। संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन पर लेबनान की सेना ने चेतावनी दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने कहा है कि उनकी सेनाएं सभी ठिकानों पर तैनात रहेंगी। इनमें दक्षिणी लेबनान में लगभग 10 किलोमीटर का एक बफर जोन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि लिटानी नदी के दक्षिण में स्थित लेबनान के इलाकों से कूटनीति या सैन्य अभियान चलाकर हिजबुल्ला की मौजूदगी समाप्त करनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए जल्द ही एक समझौता हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह का युद्ध विराम जो अगले सप्ताह समाप्त हो रहा है बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उनका मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ईरान समझौते पर पहुंचने को तैयार है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीब जादेह ने अस्थायी युद्ध विराम के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि ईरान पूरे क्षेत्र में संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक समाधान चाहता है। तुर्की में अंताल्या कूटनीति मंच के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री खतीब जादे ने कहा कि किसी भी युद्ध विराम में लेबनान से लेकर लाल सागर तक सभी संघर्ष क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के पूर्व राष्ट्रपति विन म्यंट को आज नववर्ष के उपलक्ष्य में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग द्वारा घोषित सामूहिक कैदी माफी योजना के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। सरकारी मीडिया ने बताया कि इस माफी योजना में 4,500 से अधिक कैदी शामिल हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें कितनी राजनीतिक कैदी शामिल हैं। पूर्व नेता आंग सान सू की रिहाई को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। सूकी के करीबी सहयोगी विन म्यंट 2018 में राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने 1 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था जब सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। बाद में उन्हें कई अपराधों के लिए कुल 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे 2023 में घटाकर 8 साल कर दिया गया। ये माफी योजना मिन आंग हलाइंग के पदभार संभालने के एक सप्ताह बाद आई है। ये चुनाव व्यापक रूप से आलोचना का शिकार हुआ था क्योंकि इसे न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष बताया गया था। यूरोपीय संघ के अधिकारी आज बुडापेस्ट में हंगरी के नव निर्वाचित नेता पीटर मैग्यार के सहयोगियों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन के लिए एक बड़े ऋण और हंगरी के लिए रोके गए लगभग 17 अरब यूरो को धनराशि जारी करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। निवर्तमान प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन के 16 साल के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों के चलते यूरोपीय संघ ने हंगरी की अरबों यूरो धनराशि पर रोक लगा दी थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष पर भी अपने विचार साझा किए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आज पेरिस में यूरोपीय सहयोगियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की। इसमें ईरान में युद्ध समाप्त होने के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कई देशों के सुरक्षा बलों की संभावित तैनाती पर चर्चा की गई। बैठक में नेताओं ने जलमार्ग के फिर से खुलने का स्वागत किया, लेकिन कहा कि यह स्थायी होना चाहिए। वर्ष 2026 की हज यात्रा कल से शुरू हो रही है। जायरीन का पहला जत्था देश भर के विभिन्न स्थानों से सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि 1,75,000 से अधिक जायरीन के भारत से हज यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मंत्रालय ने जायरीन के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस वर्ष कई नई पहल की हैं। जायरीन के लिए पहली बार लगभग 20 दिन के छोटे हज का विकल्प भी शुरू किया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की श्रृंखला का पहला मुकाबला डर्बन में खेला जा रहा है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में 2 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। यह श्रृंखला आगामी T20 विश्व कप के मद्देनजर बेहद अहम है। भारत की इनुंग नबी तखेलबम ने एशियाई जूडो चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीत लिया है। चीन के ओडेस में इनुंग नबी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया की लखा वादुलम सारंत सेतकिसेद को हराकर पदक अपने नाम किया। 13 साल बाद इस प्रतियोगिता में भारत का ये पहला पदक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसराइल लेबनान युद्ध विराम के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की घोषणा की। ईरान की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में 11% से अधिक की गिरावट। भारत ने इसराइल लेबनान युद्ध विराम का स्वागत किया, कहा भारत शांति की दिशा में उठाए गए हर कदम का समर्थन करता है। म्यांमा के पूर्व राष्ट्रपति विन म्यंट को नव वर्ष की सामूहिक माफी योजना के अंतर्गत रिहा किया गया। और महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच डर्बन में जारी। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।